एक बार फिर अगर आयत 114 को देखें तो इसमें से कुछ चीज़ों पे मज़ीद गौर किया जा सकता है। वमन असलम मिम्मन मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ी हस्मुहु वसा फ़ी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरती अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत में हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह की मस्जिदों से रोका जाता है। मस्जिदों से रोकना दो तरह से होता है। एक तो ये है कि मस्जिदों के अंदर ऐसी सरगर्मियां शुरू कर दी जाएं कि लोग जिस मकसद के लिए मस्जिद में जाते हैं वो मकसद हासिल ना हो। और वो मकसद क्या है? अल्लाह की याद को पाने के लिए। घरों में भी इबादत की इजाज़त है। उम्मत मुस्लिमा की यही खूबी है कि इनके लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया, यानी सजदे की जगह बना दिया। लेकिन माहौल का एक असर होता है और हम में से जो लोग भी मस्जिद में जाते हैं वो इस फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। जूँ ही आप मस्जिद के प्रेइंग रूम में जाते हैं तो आपकी कैफियत बदलने लगती है, जैसे किसी और के घर में जाकर आप बिल्कुल उसी के बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि अपने घर में बैठ के भी आपको कई दफ़ा उनका ख्याल आएगा, लेकिन उस ख्याल के आने में और किसी के ड्राइंग रूम में बैठ के उसके बारे में सोचने में वाज़े फ़र्क होता है। यही फ़र्क मस्जिद के माहौल में भी होता है। लेकिन जब मस्जिदों के अंदर कुछ इस किस्म की सरगर्मियां शुरू हो जाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगें कि जिसकी वजह से वहां जाकर भी अल्लाह की याद ना आए या वो संजीदगी ना दिखे कि जो होनी चाहिए, तो भी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। दूसरा, मस्जिदों से रोकने का तरीक़ाकार क्या होता है कि मस्जिदों की तरफ जाना इतना मुश्किल हो जाए कि एक इंसान वहाँ जाने का रास्ता ही ना पा सके। तो गोया के एक हिस्सी वीरानी हुई और एक मानवी। और ख़राबी का लफ्ज़ जो है ये भी किसी चीज़ को ख़राब करना और इसी रंग में आता है कि जैसे उसमें से वो चीज़ ना हो जो उसमें होना चाहिए। ख़राबा इसका रूट है। अब पता क्या चला कि मस्जिदों को जो लोग ख़राब कर लेते हैं तो उन उम्मतों के अंदर कमी आने लगती है। आप एक छोटा सा क्राइटेरियन अपने सामने रख सकते हैं कि कोई कौम कब पटरी से हटती है, जब वहाँ की मस्जिदें और इदारे भी तकवा की बजाय कुछ और ही पैदा करने का सबब बनने लगें। आज देखिए कि दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो मस्जिदें तो बहुत सारी हैं लेकिन आबाद नहीं है। कैसे आबाद नहीं है? कुछ तो हिस्सी तौर पे आबाद नहीं है कि लोग जाते ही नहीं हैं, और कुछ का हाल क्या है कि मस्जिदें तो हैं लेकिन लोग भी जाते हैं लेकिन वहाँ वो मकसद हासिल नहीं हो रहा जो होना चाहिए। असल में मस्जिदों की आबादी होती है वहाँ नमाज़ पढ़ने से, और नमाज के लिए जो माहौल मतलूब है जब तक वो ना कायम किया जाए उस वक़्त तक मस्जिद आबाद नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के करीब मस्जिदें बज़ाहर बहुत खूबसूरत होंगी, उसके अंदर नक्शो नगार होंगे, आराइश होगी, बड़े बड़े मिंबर होंगे, लेकिन हकीकतन वो वीरान होंगी क्योंकि उनमें हाजिर होने वाले नमाजी कम हो जाएंगे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शराफत और इंसानियत के 6 काम हैं, 3 हज़र के यानी आम जगह जैसे हम हाजिर होते हैं, और 3 सफ़र के। हज़र के 3 काम कौन से हैं? तिलावत कुरान करना, मस्जिदों को आबाद करना, और ऐसे दोस्तों की जमीयत बनाना जो अल्लाह और दीन के कामों में मदद करें, यानी ऐसा माहौल बना देना कि जहाँ दीन का काम करना आसान लगे। सफ़र के 3 काम क्या हैं? कि अपने तोशे में से गरीब साथियों पर खर्च करना, क्योंकि सफ़र में हमेशा खाना पीना कम ही रहता है और सफ़र लंबा भी हो सकता है, और उस दौर में ऐसे नहीं थे कि पहले से सब चीज़ें सेटल डाउन हो, तो ये डर होता था कि सफ़र के ख़त्म होने से पहले कहीं खाना ख़त्म ना हो। लेकिन उसमें से भी देना ये बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह हुस्ने खुल्क से पेश आना, अच्छा अखलाक, और रफ़क़ाए सफ़र के साथ हंसी खुशी तफरीक का सामान करना, लेकिन ऐसा ना हो कि ये गुनाह की खत में दाखिल हो, क्योंकि सफ़र में अमूमन थकन भी होती है, हर चीज़ नई होती है तो इंसान की तबीयत पे बोझ पड़ता है। हम सब अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से मस्जिदों को आबाद करें। आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 18 में भी आता है कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही मन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर वाकाम सलात वात ज़काह। असल में मस्जिदों की आबादी इन्हीं लोगों से है जो अल्लाह पर ईमान लाएं और रोज़े क़यामत पर और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा वो किसी और से ना डरें। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी नस्लें पैदा की जाएं कि जो मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर हो सकती है। मस्जिद नबवी जो थी वो एक ही वक्त में इबादत की जगह भी थी और हत्ता के वहाँ फैसले भी हुआ करते थे। मुसलमानों का मिलना जुलना भी हो सकता है, लेकिन जो काम किया जाए वहाँ नीयत क्या हो कि अल्लाह को पाना हो और अल्लाह के दीन को बुलंद करना हो। अब ये सारी बातें करने के बाद जिसमें ये बात कह दी गई कि देखो कि मस्जिदों से तुम ना रोकना, और अगर तुमने रोका तो तुम खुद भी मक्का वालों की तरह वहाँ से रोक दिए जाओगे। और हकीकत है कि जो किसी के लिए कुछ गलत काम सोचता है वो खुद उसका भी यही हाल होता है। इसीलिए फरमाया कि उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि ये यहाँ डरते हुए दाखिल होंगे। इसको अगर शान नज़ूल के अतबार से देखें जो हम देख चुके हैं तो वो यही है कि मक्का वालों को अब हरम में जिन्होंने मुसलमानों को आने से रोका था अब क़्यामत तक के लिए वहाँ नहीं आ सकते। कोई नॉन मुस्लिम मस्जिद हराम की हद में नहीं आ सकता। लेकिन अगर इससे बाकी मस्जिदें भी मुराद लें तो आप देखिए कि तारीख में ऐसा वक्त गुजरा कि तीन बड़ी मसाजिद हैं, बैतुल्ला, मस्जिद नबी और बैतुल मक़दस। अगर हम बैतुल मक़दस की हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो यहूद ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया तो रोम के नसारा को इन पर गुस्सा आया। उन्होंने इनसे इंतकाम लेने की खातिर एक मजूसी बादशाह यानी फायर वर्शिपर था उसके साथ मिलकर, अपने बादशाह टीटस का नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में, उसके साथ मिलकर शाम के बनी इसराइलियों पर हमला किया, इनको कत्ल गारत किया, तौरात के नुस्खे जला डाले, बैतुल मक़दस में नजासत तक डाली, खिंजीर वहाँ डाल दिए गए, उसकी इमारत को ख़राब और वीरान किया गया, और यहाँ पे फिर बनी इसराइल की शान व शौकत जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बन के आने तक बैतुल मक़दस इसी तरह वीरान रहा। ये वीरानी इनकी अपनी मजहबी जंगों की वजह से थी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में जब मुल्क शाम और इराक़ फ़तह हुए, मुसलमान वहाँ गए तो बैतुल मक़दस फ़तह हुआ। बहुत अरसा तक बैतुल मक़दस जो था वो मुसलमानों के पास रहा, लेकिन फिर वक्त के साथ जब मुसलमानों में कमी आई वो अपनी किताब से दूर हुए, कब्ज़ा मुसलमानों से निकला और 100 साल तक यूरोप के क्रिश्चियंस इस पर काबिज़ हुए। यानी आप हिस्ट्री देखें ज़रा बैतुल मक़दस की, पहले बनी इसराइलियों के पास था, ज्यूस आज के दौर के, फिर उन्होंने उसके अंदर खराबियाँ की, कुछ इस तरह का मामला किया तो वीरान हो गया। फिर वीरानी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया तो मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, लेकिन जब मुसलमान अपनी किताब से दूर हुए अल्लाह ने ये उनसे दूर कर दिया, क्रिश्चियंस के पास आ गया। तकरीबन 100 साल तक क्रिश्चियंस का उसके ऊपर कब्ज़ा रहा, और फिर 6वीं सदी हिजरी में सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको फिर फतह किया, ये फिर मुसलमानों के पास आ गया। अब ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि जब एक कौम अल्लाह की मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकती तो अल्लाह ताला दूसरी को उसके ऊपर भेज देता है। फिर यहाँ आप देखिए कि मसाजिद अल्लाह कहकर भी अल्लाह ताला ने मस्जिदों की शान बयान की, क्योंकि मस्जिद तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की तरफ नस्बत देना, इसको अरबी ज़ुबान में इजाफत बराए तशरीफ़ कहते हैं, शर्फ के लिए नस्बत देना। जैसे आप किसी को बहुत प्यार से कहें मेरा बेटा, बेटा तो है लेकिन मेरा बेटा, तो इसी तरह बैतुल्लाह कहना या मसाजिद अल्लाह कहना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इज़्ज़त देना है इस चीज़ को। फिर इसके बाद ये भी पता चलता है कि दुनिया में यही तीन बड़ी मसाजिद है जिनकी तरफ सफ़र करके आना अजर और सवाब का ज़रिया है। बैतुल्लाह जिसकी एक नमाज 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, और मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दस इनकी नमाज़ों का भी अजर दूसरी जगह की नमाज़ों से ज़्यादा है। बाज़ रिवायात में 10,000 और बाज़ में 50,000 तक का भी अजर मिलता है। और इसके अलावा किसी और मस्जिद का सवाब की नीयत से सफ़र करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जायज़ नहीं, और इन्हीं तीन की तरफ जाना जो है वो इंसान के अमल में होना चाहिए, ख्वाहिश भी होनी चाहिए। और वो एक मारूफ रिवायत जो हम पढ़ते हैं कि जिसने एक मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर देगा, ये हकीकत है। लेकिन मस्जिद से मुराद फिर वही बात नहीं कि जहाँ सिर्फ नमाज होती है, बल्कि इससे मुराद हर वो जगह के जहाँ से अल्लाह का दीन निकले। देखिए कुछ तो मस्जिदें होती हैं ना जहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आप सोचिए कि मस्जिद हो और नमाजी ना हो, लोग क्यों नमाज नहीं पढ़ते? इसलिए कि उनको पता नहीं नमाज की अहमियत, कदर नहीं है। तो इसीलिए फिर वो जगह जहाँ से तालीम और तरबियत के ज़रिए नमाजी पैदा किए जाएं, वो भी इसी ज़द में आते हैं। जो कोई ऐसा इदारा बनाता है, कोई ऐसी जगह जहाँ अपनी कोशिशों को लगाता है कि जिससे लोगों के अंदर दीन का शौक़ आए, उनका जहन बढ़े, तो उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है। पहले माओं का यही हाल होता था कि दूध पिलाते हुए भी बच्चे को ऐसी की कहानियां सुनाती थी, दूध भी पिलाती थी तो बावजू होके पिलाती थी, लेकिन जब माएँ मसरूफ़ हो गईं तो बच्चे भी दूर हो गए। आज हमारे दौर का एक और भी अलमिया है, उसको भी देख लेते हैं, मस्जिदों की वीरानी में उसका भी एक बहुत गहरा हाथ है। और वो क्या है कि औरतों को मस्जिदों से रोक लिया गया। हमारे यहाँ ये बात मारूफ है कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, हाँ लेकिन औरतें बाज़ार जा सकती हैं, ज्वेलर्स के पास जा सकती हैं, बुटीक्स पे जा सकती हैं, दुनिया के हर फील्ड में जा सकती हैं। हुआ क्या, माँ की फरामोशी पूरी कौम की फरामोशी हो गई। जब माँ जाती थी दूध पीते, बच्चे जाते थे, उन्होंने आंख खोली तो माँ को मस्जिद में जाते देखा, उस माहौल से मानूस हुए, उन्होंने देखा क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ बातें कानों में पड़ती गईं। एक वक्त आया कि बच्चे भी नमाजी हो गए। अब हुआ क्या कि माँ को आपने रोक लिया, दूध पीता बच्चा तो माँ के साथ ही होगा, साल 2, 4, 6, 10 साल, बाप तो छोटे बच्चों को नहीं लेके जाते। नतीजा क्या हुआ कि ज़रा बड़ा होने पे अगर लेके भी गए तो बच्चों के लिए चूंकि माहौल बड़ा गैर मानूस था और उनका दिल ना लगा, और नतीजा क्या हुआ कि नस्लों की नस्लें जो थी वो दीन से दूर हो गई। ज़रूरत है इस बात की कि इस वक्त ऐसे इदारे और ऐसी जगह बनाई जाएं कि जहाँ से अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले निकलें और अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। हत्ता कि अब ये आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं अमेरिका और कनाडा की तरफ कि अब मस्जिदें बनाना बंद करें बल्कि तालीमी इदारे बनाएं। किसी भी शहर में आप देखें तो आपको 70-80 मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ बच्चों की तालीम या ऐसी तालीम जो बड़ों की हो जिसके अंदर वो सीखें, वो शायद 2-4 से ज़ायद ना हो, और जो हैं वो भी बेचारे फंड्स की कमी की वजह से उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो अब जब भी कोई नया बंदा खड़ा होता है फंड रेजिंग के लिए कि हमें मस्जिद बनानी है, तो लोगों में अब ये शऊर आ चुका है कि अल्लाह के बंदो नमाज तो हम बाहर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए तो खुल गई, और अगर आपने उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने का मांगा पूछा तो लोग आपको इजाज़त नहीं देते, क्योंकि वो सोचते हैं कि बस बच्चे आएंगे तो मस्जिदें ख़राब हो जाएंगी और तालीम शुरू हो गई तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे हम ही पे तनकीद शुरू हो जाएगी। नतीजा क्या निकला कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तालीमी इदारों की ज़रूरत है। हर संजीदा इंसान और ख़ास तौर पे वो जिनकी नस्लें ऐसी जगहों में पल रही हैं कि जहाँ पे उनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो ऐसे इदारे तामीर करवाएं कि जहाँ वक्त आएगा तो नमाज भी पढ़ ली जाएगी। अब देखिए कि जहाँ मुसलमान जमा हो, जमात हो सकती है ना, नमाज तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन तालीम का काम तो हर जगह नहीं हो सकता, वो तो एक ख़ास माहौल का तकाजा करता है। तो तरतीब उलट होनी चाहिए थी कि मुसलमान इदारे बनाएं, वहाँ फुल टाइम तालीम हो, मुसलमानों को तैयार किया जाए, बच्चों से लेकर बड़ों तक तरबियत हो, जो ही नमाज का वक्त आया वहीं एक कमरे में सब नमाज पढ़ने लगे। एक कमरे को आप मस्जिद का नाम दे दें, बाकी पूरे को आप स्कूल का नाम दे दें, लेकिन जब हमने बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो इतनी कर ली कि तालीम को मस्जिद से निकाल दिया, तो नतीजा क्या हुआ कि आप देख लीजिए कि मस्जिदें आज किस कैफियत की हैं, कि अगर वाकई आंसू होते तो कुछ मस्जिदें रो रही होती, हकीकत में रो रही होती, क्योंकि वहाँ लोग हफ्ते में एक दफ़ा भी आ जाएं तो बड़ी बात है। जिस रिपोर्ट का मैंने आपसे तذکرہ किया था, उस रिपोर्ट में ये भी था कि कुछ मस्जिद ऐसी हैं जहाँ सिर्फ इमाम साहब होते हैं नमाज़ पढ़ने वाले, और मैंने खुद ऐसा तजुर्बे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमेरिका में भी किसी मस्जिद के साथ करीबी ताल्लुक़ था, साथ ही हमारा अंदर ही घर भी था साथ, तो जब मेरे घर में भी उसकी आवाज़ आती थी तो मेरे शोहर अजान देते थे, और उसके बाद जब मैं इकामत भी इन्हीं की ज़ुबान से सुनती थी तो मुझे रोना आ जाता था कि आज कोई एक दूसरा मर्द भी साथ नहीं है कि जो इकामत साथ दे, इमाम ही नमाज़ पढ़ाए, वही अजान दे, वही इकामत के, और वही अकेला नमाज़ पढ़ के आ जाए। और बीसियों ऐसी नमाज़ें पढ़ी हैं कि जहाँ हम दो के सिवा कोई भी नहीं होता था, हालांकि मुसलमान चारों तरफ भरे हुए हैं। तो ज़रूरत है कि मस्जिदों की आबादी की अमली कोशिश की जाए। वरना क्या होगा? आप देखिए कि ये एंगल दिखता है ना कि उलाई का माँ का न लहुम यदखुलू है इल्ला खाइफिन। आज अगर मस्जिदों में भी तहफ्फुज़ नहीं रहा, आज वो वक्त आ गया कि माएँ मुसलमान मुल्कों में रहते हुए बच्चों को मस्जिद फजर की नमाज़ के लिए नहीं भेजती कि हालात ख़राब हैं, कोई पता नहीं किस मस्जिद में गोली चल जाए। फजर की नमाज़ पे बीवियां शोहरों को नहीं भेजती कि मत जाइए, हमें नहीं पता वहाँ क्या होगा। तो आज देखिए फिर खौफ की कैफियत आ गई ना, कि बाहर आप महफूज हैं और दीन के काम के साथ आप जुड़ते हैं तो आप खौफ खाते हैं। फरमाए लहुम फि दुनिया खिजुन व लहुम फिल आखिरती अजाब नज़ीम, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। क्या इससे बड़ी मुसलमानों की को रुसवाई होगी जो आज के दौर में हो रही है? आज लोग किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। हरम काबा को भी अगर हम देखें तो वहाँ अल्लाह के नाम पे जो घर बना था, 360 बुत वहाँ आ गए, और नतीजा क्या हुआ कि वो एक अल्लाह की बजाय कितने बुतों को पुकारने का जरिया बनने लगा। तो जब लोग अपने हिस्से का काम नहीं करते तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में जलील और रुसवा कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उसको पढ़ के तो वाकई लगता है आज ही के दौर की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहू, इस्लाम के नाम के सिवा इसका कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सिर्फ नाम का इस्लाम रह जाएगा। फिर आपने फरमाया वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहू, कुरान में इसके रस्म के सिवा कुछ नहीं बचेगा, यानी रस्मी तौर पे आप कुरान को पढ़ लें या अल्फाज और हरूफ के मजमूए का एक नाम कुरान बन जाएगा। और आपने फरमाया कि उस वक़्त हाल क्या होगा, मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबुम मिनल हुदा, इनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। यहाँ भी देखिए कि लफ्ज़ ख़राब है यानी वीरान होंगी। फिर आपने फरमाया कि उलमाउहुम शर्रुम मिन तहता अदीमिस समाई, इनके उलमा आसमान की छत के नीचे के बदतरीन इंसान होंगे। अल्लाह अकबर। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु वफीहिम तऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा और उन्हीं में घुस जाएगा। मुराद क्या कि उनका काम ही फितना अंगेजी, मुखालफत, जंगो जिदाल होगा। अपने अपने फिरके के जज्बात भड़काते रहेंगे, मुसलमानों के इख्तलाफात को हवा देंगे। आज भी आप देखिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि जिनको हम उलमा कहते हैं उनमें से अक्सर का काम ही ये है कि वो सिर्फ दूसरों के एक्सप्लाइटेशन करें। इस्लाम ने तो इतना प्यारा दीन दिया था, एक कितना जाती दीन था। इस्लाम में मस्जिद को कभी भी पेशा नहीं बनाया जा सकता। जहाँ मजहब पेशा, पेशे को मुराद के ऑक्यूपेशन, आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है ना जब मजहब, तो आप सोचिए कि फिर वो बात ख़त्म होती है ना। इस्लाम में पापाइत है जिसको आप पॉपिज्म कह सकते हैं, ना वहाँ कोई किसी को इसको पेशा बना सकता है। इस्लाम तो एक खुली किताब है, हर शख्स कुरान पाक को पढ़े, अरबी सीखे, अल्लाह की किताब को समझे, हर शख्स को इबादत करनी आए, निकाह का वक्त आए तो हर शख्स अपनी बच्ची को खुद ही निकाह पढ़ा ले, कोई फौत हो जाए तो अपने बाप का जनाजा खुद ही पढ़ा लें। हमने हर चीज़ को एक पेशा बना लिया, एक चंद मखसूस लोगों के साथ रखा, और नतीजा क्या हुआ कि हम मोहताज हो गए कि अगर हमने निकाह पढ़वाना है तो मौलवी साहब चाहिए, अगर हमें किसी का जनाजा पढ़वाना है तो मौलवी साहब चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमें तो आता ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं। असल जोर सीखने पे होना चाहिए और आज भी उसके ऊपर बहुत कम बात होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनके लिए दुनिया में भी खिजशन है, वलहुम फिल आखिरती अजाब नज़ीम, और इनके लिए आखिरत में तो बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम बुरे फितनों से बचाए कि जिसका तذکرہ इस आयत में है। फिर फरमाया वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, और अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, फिर तुम जिधर भी मुंह करो वहीं अल्लाह का चेहरा पाओगे, इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला वुस्सत वाला और खूब जानने वाला है। इस आयत के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत बातें। पहली बात यह है कि सब कुछ अल्लाह का है, मशरिक और मगरिब। क्या मतलब? सिर्फ मशरक और मगरिब उसका है? नहीं, दो किनारे हैं ना, मशरक उसका है, मगरिब उसका है, तो उसके बीच की चीज़ें तो खुद ब खुद हो जाएंगी उसी की। इशारा है इसमें फिर एक मजहबी झड़प का। यहूद जो थे वो बैतुल मकदस के मगरबी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, जहाँ सखर है, पत्थर जिसके ऊपर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी अपने बुराक को बांधा था। और नसारा जो थे वो बैतुल मक़दस के मशरकी ईस्टर्न साइड पे नमाज़ पढ़ते थे। देखिए बज़ाहर एक किबला इनका, लेकिन एक किबला होने के बावजूद भी आपस में झगड़ा करते थे। अब हुआ क्या कि जब मुसलमान कुछ अरसा मदीना में बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ चुके, तो उसके बाद तब्दीली किबला का हुक्म आ गया, जो अगली आयतों में अब मौजू शुरू हो गया यहीं से। तो उस पे यहूद ने एतराज़ शुरू कर दिए, शुबहात डाल दिए कि ये क्या तरीका है इनका कि कभी इधर नमाज़ पढ़ते हैं, कभी उधर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन जहतों में क्यों झगड़ते हो? ठीक है, किबले का तय नमाज का एक बुनियादी रुकन है, अपनी मर्जी से जानते बूझते किबले के ख़िलाफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना या कोशिश ही ना करना, इस सूरत में तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये बात याद रखो कि सजदा अल्लाह को है, काबा को नहीं है। बैतुल्ला क्या है? एक घर है, मिट्टी और चूने और पत्थर से बना हुआ। वो क्यों मिला? इत्तेहाद के लिए, यूनिटी के लिए, कि सब मुसलमान एक तरफ फोकस हो जाएं। बस उसके बाद अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रह जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इधर कर ले, कोई उधर कर ले। और इसी तरह इस आयत में इशारा है नफिल नमाजों की तरफ भी। एक मौके पर ऐसा हुआ कि रात के वक्त किसी सफ़र में थे तो सहाबा किराम ने तहज्जुद पढ़ी। हर एक ने अपने अंदाजे से किबला तसव्वुर किया, क्योंकि ना उस वक्त कंपस थे, ना कोई उस वक्त ऐसी चीज़ें थी कि जिससे डायरेक्शंस मालूम हो। और जिधर नमाज पढ़ी उधर एक एक पत्थर रख दिया निशानी के लिए। सुबह जब उठे कि चलो देखते हैं कि हमने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो हर एक की मुख्तलिफ तरफ थी, किसी का एक तरफ था, किसी का दूसरी तरफ था। अब परेशान हो गए कि हमने तो गलत तरफ नमाज पढ़ ली। तो उस पर ये आयात और इसी तरह की और आयात भी हैं, वो नाजिल हुई कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, मशरक और मगरिब तो उसी के हैं, क्यों फिक्र करते हो? फाइनमा तुवल्लु, बस जहाँ कहीं भी तुम मुतवज्जे होगे, जब कहीं तुम उसकी तरफ मुंह करोगे, फसम्मा वजहुल्ला, तुम अल्लाह का चेहरा पालोगे, यानी अल्लाह की रजा पाओगे। वजहुल्ला के फिर दो मानी है, यानी अल्लाह का चेहरा, ये क्या है, इसको ऐसे ही मान जाइए। क्योंकि अल्लाह ताला की, जिस तरह हम अल्लाह ताला की मिसाल नहीं दे सकते, उसकी सिफात की मिसाल भी नहीं दे सकते, अल्लाह ताला की शान क्या है, वो तो एक बिल्कुल जहत से और मुकाम से मावरा है। वो तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसको हम न देख सकते हैं, ना परख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। बस वो तो एक नूर है जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला का चेहरा ऐसे ही है जैसे उसने कह दिया, बस हम इसको ही मानेंगे। दूसरा, वजहुल्ला से मुराद है अल्लाह की रज़ा, खुशनुदी, कि तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करोगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। वो उस काम को देखकर खुश होगा जो तुम उसके लिए कर रहे हो, सिर्फ उसी के लिए करो। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, क्यों इतने तंग दस्त बनते हो? इतनी घुटन क्यों है तुम्हारे दिलों में कि तुम दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? अल्लाह ताला तो वुसअत वाला है। देखिए अल्लाह ताला की ये दोनों सिफात इस आयत के साथ, बल्कि पिछली आयत के साथ कितना मैच करती हैं कि अमूमन झगड़ों की वजह क्या होती है? तफरकेबाजी, गिरोहबंदी, मसलक परस्ती क्यों होती है जब वुसअत कल्बी नहीं होती? तंग नज़र, नैरो माइंडेडनेस, दीन को एक बहुत छोटे से सिनेरियो में देखने वाले लोग। अल्लाह ताला कह रहे हैं अपनी वुसअत को बढ़ाओ, अपनी निगाहों को खोलो, दूसरों को भी बर्दाश्त करो। और दूसरी वजह जो झगड़ों की होती है ना, वो इल्म की कमी है। एक जुमला लिख लें, शायद ज़िंदगी में कभी आपके काम आएगा, कि थोड़ा इल्म इंसान को तंग नज़र बनाता है, लेकिन जो ही आपका इल्म बढ़ता जाता है, आप वसीउल कल्ब होने लगते हैं। अगर आप किसी दीनदार को बहुत घुटे दिल वाला पाए ना, तकब्बुर है, शान है, बहुत है, अपने आप को समझ रहे हैं और अपने आप दीन को बड़ा मुश्किल करके लोगों पे पेश कर रहे हैं, तो आप समझे कि अभी इसका दीन थोड़ा है, अधूरा है, ये रास्ते का दीन है। लेकिन जब वो दीन, उसका इल्म बढ़ेगा, उसको पूरा दीन समझ आएगा, सीरत की रोशनी में दीन को सीखेगा, सुन्नतों को साथ लेके चलेगा, आज के दौर के मुताबिक अल्लाह के नबी की बातों को समझेगा, तो आप देखेंगे कि उसका सिनेरियो बढ़ता जाएगा। मैं इसको इस तरह समझती हूँ कि जब आप सिर्फ एक गांव में रहते हैं ना, बचपन में किसी छोटे गांव में आप रहते होंगे, या कोई भी आज भी रहता है, जो शख्स सारी ज़िंदगी गांव में रहा, आप देखिए कि उसकी सोच कितनी है, खेत और जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें होंगी, उसकी सोच ही है छोटी छोटी बातें और जो मामले होंगे। कोई शख्स वहाँ से उठ के शहर में आ जाता है, उसको अपने से मुख्तलिफ लोग दिखेंगे, उसको कई चीज़ें बहुत मुख्तलिफ लगेंगी। मसलन टॉयलेट देखिए कि वहाँ के उधर से डिफरेंट हो सकते हैं, खाने पीने के स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, पहनना ओढ़ना डिफरेंट होगा। अब उसके अपने छोटे से सर्कल के अंदर एक बड़ा सर्कल आ गया जो शहर का है। अब पहले तो वो हो सकता है कि ये भी बात कह दे कि आप डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ के खाना खाना है, वही सही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ना मैंने सारी ज़िंदगी कोई कौन देखा है, ये मैं आपको भी बता दूं, और ना मेरा तजुर्बा, अगर मैं कोई गलत मिसाल दे दूं तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन बज़ाहर ज़हन में यही आता है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी बड़ी सादी होती है, वो नीचे बैठ के खाना पसंद करते हैं। अब एक शख्स गाँव में दर्स देता है, वो खाना खाने की बात करता है और वो खाना खाते हुए हमेशा यही मिसाल देता है कि नीचे बैठ के खाना चाहिए, और ठीक है, अच्छी बात है, सुन्नत भी है और इसमें सहूलत भी बहुत है। अब हुआ क्या कि वो शहर में आ गया, उसने कुछ लोगों को देखा तो डाइनिंग टेबल और चेयर पे खाना खा रहे हैं। अब ज़रूर उसके जहन में आ जाएगी बात, पहले वो चीज़ जो गांव में रहते हुए उसको नामुमकिन लग रही थी, उसने कभी देखी नहीं सुनी नहीं, हो सकता है शहर में उसी को किसी जगह पे बैठ के खाना पड़े और वहाँ हो ही सिर्फ डाइनिंग टेबल और चेयर, तो उसको ज़रा सी उसके अंदर वसत आएगी, फैलेगा, उसका जहन का उफक बढ़ेगा। अब क्या होता है, जब यहाँ से आप उठते हैं तो आप एक और दुनिया में जाते हैं, आप जितनी दुनिया फिरेंगे, जितनी ट्रैवलिंग करेंगे, आपकी सोच अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ेगी। हम पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं, हमारे वहाँ के ख़ास उलमा, उन्होंने चंद ख़ास मौजूआत को बहुत अहम समझा हुआ। बस आप देखिए कि हमारे यहाँ जो पर्दे का तसव्वुर है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई दीन का काम करे और चेहरे का पर्दा ना करे, यानी दीनदार शख्स की औरत की पहचान ही क्या है कि वो पूरा पर्दा करेगा। अब हम सब इस सोच के सपरवान होते हैं, हम इसको देखते हैं कि भाई जब तक पूरा अपने आप को हम कवर नहीं करते, इसके मुताबिक यही दीन है। और जिसको हमने मिसाल है कि दीनदार कहलवाता हुआ देखा, लेकिन हमें पता चले कि फलां अपने आप को छुपाता नहीं है, तो हम एकदम शक में पड़ेंगे। लेकिन आप ज़रा सा बाहर आके देखें, आप ज़रा दुनिया में निकलते हैं, आप शाम में निकलते हैं, आप यूएई में जाते हैं, चले वहाँ तो कुछ यानी ऐसा सोच भी है कि चेहरे का पर्दा पर्दा नहीं है। मैं मिसाल दे रही हूँ, रुख्सत है, वो कहते हैं कि नहीं पर्दा चेहरे का नहीं है। उसके बाद आप और आते हैं, आप दुनिया में ऐसी जगह जाते हैं जब मुख्तलिफ लोग जमा हुए हैं एक ही कल्चर में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ कुछ अरब आए हुए हैं, कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, कुछ बंगाल के, कुछ वहाँ के लोकल है। अब वहाँ जाते हैं आपका स्नैरियो बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। जितना आप अपने आप को वाइडली करेंगे ना, उसी से बात बनेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप एक सुराख में से देखें और बिल्कुल करीब से देखें ना, तो आपको उतनी चीज़ दिखती है जितनी उस सुराख के रेंज में आ रही होती है, लेकिन आप उसको थोड़ा पीछे से देखते जाएं या आगे से फैलाते जाएं तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। इस बात को आपने समझें, जैसे मैंने कहा, यानी क्लोज सर्किट में देखते हैं तो उसकी रेंज में, जैसे अगर ये मैं अपने हाथ के आगे एक पाइप लूँ और इसको पूरा आगे वहाँ तक करूँ, तो उस पाइप के जो दूसरे सिरे पे जो चीज़ होगी ना वो दिखेगी, और अगर मैं यूं करूँ कि एक सर्कल बना लूँ लेकिन आगे से ये खुला है, तो मुझे आप सारा पूरा हॉल ही दिखेगा, फ़र्क है ना। तो बिल्कुल ये दो सिफात मस्जिदों की आबादी के लिए लाजिम है, वुसअत कल्बी और इल्म हासिल करना। थोड़ा इल्म ज़िंदगी को मुश्किल करता है, ख़ास तौर पे हदीस पढ़े बग़ैर जब हम दीन सीखते हैं। बाद लोग सुन्नतों की भी बड़ी बात करते हैं लेकिन हदीस नहीं पढ़े होते, उनको पता ही नहीं होता कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत किस मौके पे थी और इसका हालात के साथ क्या तकाबुल था। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने अपनी वो दो सिफात पेश की जो कि मतलूब थी, कि ईमान वालों के अंदर ये खूबियाँ जब आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मस्जिदें आबाद होंगी।